आज के कॉन्टेक्स्ट में ऑस्ट्रेलियन डॉलर के गिरने के मेरे हिसाब से दो मुख्य कारण हैं। एक तो यह कि यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल रिजर्व बोर्ड ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया 0.25%, और ये भी इंडिकेशन दिया कि वो आगे भी बढ़ाती रहेगी अपनी इंटरेस्ट रेट। इससे ऑस्ट्रेलियन डॉलर इतना कमज़ोर नहीं हुआ जितना कि यूएस डॉलर मजबूत हो गया, फंड्स यूएस डॉलर एसेट्स में जाने लगे। और इसका दूसरा कारण यह है कि यह चाइना की इकोनॉमी थोड़ी स्लिप कर रही है, उसका स्टॉक मार्केट काफ़ी नीचे गिर गया है, अब काफ़ी वॉलेटाइल हो गया है। और चाइना ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और चाइना को जो एक्सपोर्ट्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया से, ये ऑस्ट्रेलिया के अर्निंग्स के एक मेजर सोर्स हैं। इसलिए चाइनीज इकोनॉमी के नीचे जाने के साथ साथ ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी कुछ हद तक नीचे चला गया है।
जी अच्छा डॉक्टर झा, ये बताइए कि ये जो करेंसी घटी है जो अमेरिकन डॉलर की तुलना में, इसका ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ता है?
शॉर्ट रन में तो अच्छा असर पड़ेगा, जो दिखाई पड़ रहा है कि थोड़े एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, टूरिस्ट इनफ्लोज बढ़ जाएंगे, शायद स्टूडेंट्स भी कुछ ज़्यादा आने लगे, तो सर्विसेज एरिया में थोड़ा सा अभी कुछ शॉर्ट रन में कुछ उसका अच्छा इफेक्ट हो सकता है, स्टिम्युलेटिव इफेक्ट हो सकता है। लेकिन ये ज़्यादा दिन मेरे हिसाब से नहीं टिकेगा, और आप देख रही हैं कि अब ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर अब थोड़ा ऊपर होने लगा है। एक समय में था कि लगता था कि शायद 60 के आसपास पहुंच जाए, लेकिन अब 70 से नीचे नहीं जा रहा है। इसका 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 कारण यह है कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने करेंसी को ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होने देना चाहता है, क्योंकि उसके जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो रहा है वो कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए तत्काल उन्होंने, फेडरल रिजर्व बोर्ड ने एक इंडिकेशन दिया कि अभी तुरंत फिर से कोई इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होगा यूनाइटेड स्टेट्स में, तो इसलिए वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और दूसरा कारण यह है ज़्यादा दिन नहीं चलने का कि जापान, जो ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पार्टनर है, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स तो नेगेटिव हो गए हैं, तो येन की तुलना में ऑस्ट्रेलियन डॉलर का वैल्यू जो है वो रिलेटिवली बढ़ने लगेगा। इस कारण से ये जो अभी स्टिमुलेटिव इफेक्ट आप देख रही हैं वो ज़्यादा दिन चलने की संभावना नहीं है।
तो मतलब आपके अनुसार जब करेंसी थोड़ी वीक होती है तो वो एक तरह से अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है आपके अनुसार?
हर हर एक परिस्थिति में नहीं, आज की परिस्थिति में ऐसा जरूर है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया के करेंसी के कमज़ोर होने के कारण ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्ट अर्निंग्स बहुत बढ़ जाता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया का जो टैक्स शॉर्टफॉल हो रहा है, रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है, उसको कम करने में मदद करेगा। इस कारण से ही इसका कुछ अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगर करेंसी कंटिन्यूसली डिप्रिशिएट ही करती जाए तो वो तो अच्छी बात नहीं है, वो अंततः इन्फ्लेशन में बदल जाएगी, और फिर इंटरेस्ट रेट को बढ़ना पड़ेगा, और फिर करेंसी उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ जाएगी, ऊपर चली जाएगी।
जी, और आपके अनुसार मतलब अभी आपको लगता है कि जो लेवल पर है संभावना अभी तक यही है कि कथित रूप से इसी लेवल पर शायद बनी रहे, थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन जिस तरह से एक समय लग रहा था कि बहुत गिर सकती है उसकी संभावना आज कम लग रही है?
जी, उसकी संभावना मुझे कम लग रही है, और ये मैंने दो कारण उसके बताए, और ये मुझे लगता है कि 70 के आसपास ही ये करेंसी चलती रहेगी। अगर कोई बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन हुआ तो उसको उसको स्मूथ करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया कुछ कदम उठा सकती है, लेकिन उसके उसके एब्सेंस में तो मुझे लगता है कि 70 के आसपास ही, 68 से 72 के आसपास ही ऑस्ट्रेलियन डॉलर अभी नियर फ्यूचर में रहेगा।
जी अच्छा डॉक्टर झा, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो करेंसी फ्लक्चुएशन होता है, जो ऑसी डॉलर गिरा है, इससे एक आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ता है?
आम आदमी की जेब पर इसका दो असर पड़ता है। एक तो ये कि अगर जो लोग उन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं या काम करना चाहते हैं जो इस डॉलर के गिरने से जिनको फायदा हुआ है, जैसे कि टूरिस्ट इंडस्ट्री हो या स्टूडेंट स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटीज हो या और भी किसी तरह के जो एक्टिविटीज़ हों जो एक्सपोर्ट लेड और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, तो इसके कारण लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन इनको नुकसान भी होगा, इसलिए क्योंकि अब इम्पोर्टेड गुड्स के दाम बढ़ जाएंगे। तो जैसे कि कार्स हैं, कार्स तो अब ऑस्ट्रेलिया में कार्स का निर्माण होता नहीं है, तो अब कार्स सारे के सारे कार्स तो इम्पोर्ट किए जाएंगे, तो कारों के दाम जो हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर टर्म्स में वो बढ़ जाएंगे। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इम्पोर्ट करते हैं, तो ये तो काफ़ी फ्री ट्रेड में विश्वास रखते हैं ऑस्ट्रेलिया में हम, इसीलिए अभी हो सकता है कि जो इम्पोर्ट्स के दाम बढ़ने के कारण कुछ लोगों को कुछ तकलीफ परेशानी हो।
जी, बस एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहते हैं डॉक्टर झा, कि क्या जो करेंसी का स्तर होता है, क्या उससे अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, क्या उसके संकेत मिलते हैं, या दोनों को जोड़ के नहीं देखा जा सकता?
नहीं, करेंसी का दो तीन पैरामीटर्स होते हैं एक इकोनॉमी में, जिन जिनको एक करेंसी को अकेले में नहीं देखना चाहिए। कभी भी करेंसी को देखना चाहिए, जीडीपी ग्रोथ रेट को देखना चाहिए, इन्फ्लेशन रेट को देखना चाहिए, और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को देखना चाहिए। कम से कम इतने चीज़ों को तो देखना ही चाहिए एक इकोनॉमी के बारे में एक समग्र दृष्टिकोण बनाने के पहले। वो अब बाकी चीज़ों पर भी निर्भर करता है, लेकिन अगर करेंसी वीक हो गई है आपकी, तो उसका मतलब यही हुआ कि अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर वीक हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्ट्रेलियन एसेट्स जो है वो बाकी एसेट्स की तुलना में थोड़े थोड़े वो कम वैल्यू के हो गए हैं। लोग ऑस्ट्रेलियन एसेट्स नहीं खरीदना चाहते हैं ज़्यादा बाकी एसेट्स की तुलना में। तो इसका तो फाइनेंशियल लॉन्ग रन में फाइनेंशियल वेल्थ पर भी असर पड़ेगा, इसलिए ये शॉर्ट टर्म में एक्सपोर्ट्स थोड़े स्टिमुलेट हो जाते हैं, इंपोर्ट्स थोड़े कम हो जाते हैं, इस कारण से इकोनॉमी में थोड़ी स्टिमुलेटिव एक्टिविटी होती है। लेकिन वो अभी ऑस्ट्रेलिया को तो अभी बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो काफ़ी लो है। ग्रोथ रेट को पिकअप कराने की बात है, तो ग्रोथ रेट तो पिकअप उसका डायरेक्ट कोई केवल केवल एक्सचेंज रेट से ही ग्रोथ रेट का डायरेक्ट संबंध नहीं है। इन तीन चार पैरामीटर्स जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए, उनके उनको साथ साथ देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया के केवल एक्सचेंज रेट के गिरने से, डॉलर वैल्यू से गिरने से ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है।
डॉक्टर झा, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।